नादं जिनेन नियतं जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालं मे कोसकदिवारेदुम् इन्दो वा तः जिनेन्दो वा एवं जोनिश्चयदो जानदि दौवानि सौवपच्चाये सो सद्दिथि शुद्धो दो संकटिशोहुकुदिथि। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन डॉक्टर हुकुमचंद भारिल लिखित पुस्तक द्वारा हमारा स्वाध्याय चल रहा है। क्रमबद्ध पर्याय ये तो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु में जो द्रव्य गुण पर्यायों की जो अपनी अपनी स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है, उस वस्तु व्यवस्था का हम यहाँ ज्ञान कर रहे हैं। तो उसमें हमने 47 पेज तक पढ़ा था, उसमें बात आई थी कि कोई भी कार्य है, जब कार्य होता है तो पांचों ही समवाय वहाँ उपस्थित होते हैं, यानी पांचों ही कारण आ मिलते हैं। पांचों ही कारण मिलते हैं तब कार्य होता है, कार्य यानी पर्याय। तो पर्याय कहाँ कहाँ होती है, तो हरेक द्रव्य के हरेक गुण में हर समय एक एक अपनी अपनी जो सुव्यवस्थित निश्चित क्रम से और वही होने वाली उसी काल में ऐसी पर्याय उसके अपने स्वभाव के कारण उत्पन्न होती है। उस समय सारे ही अन्य कारण भी स्वयमेव उपस्थित हो जाते हैं निमित्तादि। यहाँ 47 पेज पर है, सारे हिंदी है ना, किसी का गुजराती है? हाँ बहन गुजराती से तुम्हारे पास कई से गुजराती पेज नंबर में कई थे 42 थे। आप स्वामी जी का भी यहाँ कहेंगे ना, इस संदर्भ में पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं उसकी बात अभी करेंगे। लाऊं यदि इस कपड़े 39 पेज पर चले हो तो नहीं पेज पर चले सेकंड पैराग्राफ 42 पेज पर हिंदी 47। आत्मा अपने परिणामों का कर्ता है या नहीं, यह प्रश्न उठाते हैं। आत्मा, हमने देखा कि आत्मा को अकर्ता कहा या अकर्तावादी कहा, तो अकर्तावादी में ईश्वर हमारा कुछ नहीं करता, इतना ही नहीं कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उसी को अकर्तृत्व को ही सहज कर्तृत्व भी कहा, सहज कर्तापना या स्व कर्तृत्व भी कहा था। तो यहाँ प्रश्न उठाते हैं और स्वयं ही उत्तर देते हैं कि कोई ऐसा कहेंगे कि आत्मा कर्ता है कि नहीं है, तो आत्मा अकेला कर्ता है, आत्मा दूसरे का तो कर्ता नहीं है हमने मान लिया, तो आत्मा अपने स्वयं के परिणामों का कर्ता है या नहीं। तो क्या कहते हैं कि आत्मा अपने परिणामों का कर्ता है या नहीं, इस संदर्भ में पूज्य स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पूज्य स्वामी जी ने कांजी स्वामी, प्रश्न है कि पर्याय क्रमबद्ध है यानी जो निश्चित होने वाली है वही होगी, उसी क्रम से होगी, उसी निमित्तों से होगी, तो आत्मा की पर्याय भी क्रमबद्ध जो होने योग्य है वही होती है, इसलिए आत्मा उनका अकर्ता है, क्या यह बात ठीक है? पहले हम प्रश्न समझेंगे कि पर्याय क्रमबद्ध होती है और होने योग्य होती है, तो आत्मा भी स्वयं अपने परिणामों का कर्ता है क्या नहीं है, कि उसको सर्वथा अकर्ता कहा, यह प्रश्न है यहाँ। तो उसका उत्तर देखते हैं, नहीं, यानी यह बात ठीक नहीं है। क्या? कि आत्मा अपने परिणामों का अकर्ता है, यह बात ठीक नहीं है। यानी उसका अर्थ क्या हुआ, आत्मा अपने परिणामों का कर्ता है, आत्मा अपनी पर्याय का अकर्ता है यह बात ठीक नहीं है। आत्मा अपनी जिन जिन क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होता है उनका कर्ता वह स्वयं ही है। मैंने पहले तो बता दिया कि इनका पर वो कर्ता वो स्वयं ही है, परंतु यहाँ इतना विशेष समझने योग्य है कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है। ये समझाते पहले तो समझा दिया कि आत्मा अपने अपने ही परिणामों का कर्ता है, तो आत्मा अपने परिणामों का कर्ता है। एक गुजराती है पेज नंबर 43। यहाँ अपना प्रश्न ये चल रहा है कि अपना आत्मा दूसरे का तो कुछ नहीं करता। हाँ इंदुबे, आत्मा दूसरे का तो कुछ नहीं करता, परंतु क्या आत्मा अपने परिणामों को भी करता है? क्या करता है? क्योंकि होने वाला है, होने योग्य, तो हम अपने परिणामों के करता है कि नहीं? तो उसका उत्तर देते हैं कि आत्मा अपनी जिन जिन पर्यायों से यानी क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होता है उनका कर्ता वह स्वयं ही है। ये तो पहले सिद्धांत बता दिया, अब उसको विशेष समझाते हैं। परंतु यहाँ इतना विशेष समझने योग्य है कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अपना स्वरूप भिन्न अन्य द्रव्यों से उसको प्रतिभासित हो गया है, अथवा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, वह जीव यानी शॉर्ट में बताना है सम्यक दृष्टि जीव क्या कहता है, मिथ्यात्वादी भावन रूप से परिणमित होता ही नहीं है। यानी मिथ्यात्व का कर्ता कौन है? पहले हम देखें ना, मिथ्यात्व आत्मा का परिणाम है, ये तो बात सही है, वो विभाव परिणमन है, उसका कर्ता कौन है? तो सम्यक दृष्टि तो नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पर्याय में मिथ्यात्व है ही नहीं है। तो ये सिद्ध हुआ कि जब तक जीव मिथ्यात्वी है तब उस मिथ्यात्व रूप पर्याय का कर्ता कौन है? तो वो स्वयं जीव। तो मिथ्यात्वादी जो अज्ञान है उसका कर्ता अज्ञानी जीव है। जब तक अज्ञान है तब तक वो उस अज्ञान रूप मिथ्यात्व रूप स्वयं ही परिणमित हो रहा है। जब वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो स्वयं ही अपने ज्ञान रूप भावों का कर्ता होगा। देखो यहाँ से समझते पहले, यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है वह मिथ्यात्वादी भावन रूप से परिणमित होता ही नहीं है, इसलिए मिथ्यात्वादी भावों का तो वह अकर्ता ही है। यानी सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्वादी भावों का अकर्ता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके उत्पन्न होते ही नहीं है उसकी पर्याय। अब मिथ्या तो नहीं होता है परंतु राग होगा कि नहीं होगा? हाँ दीपाली, जो सम्यक दृष्टि है चौथे पांचवे छठे सातवें गुणस्थान वर्ती अभिजीवों की बात करेंगे, मिथ्यात्व तो उनको है ही नहीं है, तो क्या उनके पर्याय में राग द्वेष होगा कि नहीं होगा? होगा, उसको कहते भूमिका अनुसार होगा। चौथे वाले के योग्य राग उसको होगा, पांचवे की नहीं। बुद्धिपूर्वक की भी बात है, बुद्धि अबुद्धि की यहाँ ऐसा हमने भेद नहीं किया, परंतु चौथा पांचवा छठा जो है उसको भी पर्याय में राग है, इतना तो हम पहले सिद्ध करते। क्यों है? क्योंकि पूर्ण वितरागी हुआ नहीं है, तो उसकी सराग और वितराग दोनों ही मिश्र धारा चल रही है, यानी अभी उसका आत्मा का अनुभव है, अभी मिथ्यात्व नहीं है। तो मिथ्यात्व का तो कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो पर्याय में है ही नहीं है। और हमने रूल क्या बताया? अपने पर्यायों का कर्ता है। तो मिथ्यात्वादी रूप वहाँ पर्याय होती ही नहीं है, तो उसका कर्ता बनने का सवाल ही कहाँ है? बराबर। अब पर्याय में क्या है? तो पर्याय में राग है, अभी ज्ञान भी है, समय दर्शन भी है, पर उसकी अभी नहीं चर्चा करें। अभी पर्याय में राग हो रहा है, अभी कार्यक्रम है ना वहाँ, तो मिथ्यात्वादी भावों का तो करता ही है। तथा जो अल्प रागादी विकार होता है, अल्प कहा, जब अनंतानुबंधी चले जाते हैं तब तीन कषाय चौकड़ी अभी बाकी है, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोलन है, तीनों को मिलकर अभी अल्प कहा। पहले चारों के अनंतानुबंधी चली, फिर भी उसको बहुत कहा था, अकेला अनंतानुबंधी गया, फिर वो अल्प राग रह गया। इतना वो अनंतानुबंधी तीव्र राग है। तो अनंतानुबंधी चला गया तो कहते कि जो अल्प रागादि विकार होता है, कभी चौथे वाले को तीन कषाय है उतना उसको राग है, अभी पांचवे वाले को दो कषाय चौकड़ी है तो उतना राग है, आगे वाले में भी रागे तो उतने एक कषाय है अभी। तो अल्प रागादि विकार होता है उसमें भी वह एकत्व रूप से परिणमित नहीं होता है। जब सम्यक को प्राप्त किया था उसी के उसके तो पहले ही तत्व निर्णय जब किया था उसमें उसने अपने से भिन्न राग को पहले तो निर्णय किया था। जब ससन्मुख परिणाम में उसने आत्मा का अनुभव किया तब वो अभी राग भिन्न और मैं स्वयं भिन्न हूँ, गायक भाव भिन्न है और अपने में ही उठने वाले विकार भिन्न है, ऐसे उसने विकार को राग को अपने से भिन्न जान लिया, अपना भिन्न अनुभव कर लिया। तो इसको क्या कहते कि जो अल्प रागादि है उनसे एकत्व रूप अभी नहीं रहा। जानने वाला तो है क्योंकि राग भी अपने में उत्पन्न हुआ, एक ज्ञान ने जाना परंतु ज्ञान ने उसको अपने रूप से नहीं जाना, वो भिन्न है ऐसा जान लिया उसने, अपने स्वरूप से भिन्न है, ये विकार है मेरे से भिन्न है, मैं तो त्रिकाली जैसा कवे था। हमने देखी ना वो अखंड जो कैपेसिटी रूप जो शुद्धात्मा नहीं, जो ध्रुव शुद्धात्मा जो ध्रुव रूप भाव जो है वह मैं हूँ और ये जो राग है वो अल्प है, एक एक समय में उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं, तो ये अपने से भिन्न है तो उनसे उसका एकत्व नहीं है, उनसे विभक्त है। राग अपने से भिन्न है ऐसा उनको अनुभव हो गया है तो क्या कहते हैं कि उनसे एकत्व रूप से परिणमित नहीं होता, यानी सिंपल भाषा में राग का स्वामित्व नहीं है उनको। राग आता है उनको जानते भी है, अपने पर्याय में कमजोरी भी जानते कि मैं इतना स्वयं में लीन नहीं हो सकता हूँ, अपना अवलंबन इतना तीव्र नहीं है, तो मुझे भी पर्याय में राग भी विद्यमान है इसका तो ज्ञान करेंगे, परंतु अपने स्वरूप से भिन्न है ऐसा भी वहाँ उसका श्रद्धा भी है और ज्ञान भी है। तो क्या कहते हैं कि उनसे एकत्व रूप नहीं परिणमित होते, इसलिए क्या है उस अपेक्षा से, अपेक्षा सहित कथन है, तो उस अपेक्षा से वह रागादि का भी अकर्ता है। रागादि का अकर्ता कहा, किस अपेक्षा कि वह उनसे एकत्व नहीं है इसलिए उसमें अकर्तापन है, परंतु यदि एक कौन परिणाम चारित्र गुण तो अपना है, वो चारित्र गुण वहाँ विकारी परिणमन है, ज्ञान की अपेक्षा देखेंगे अभी उस अपेक्षा से देखेंगे तो वो जीव का ही परिणमन है, जीव के बाहर तो नहीं है, जीव के ही अपने असंख्यात प्रदेशों में उसका ही जो चारित्र गुण है वो अभी शुद्ध भी रूप चल रहा है, उसका विकराग धारा भी है और ये चराग धारा भी उसी चारित्र गुण की ही पर्याय है। तो अपेक्षा सहित अगर हम देखेंगे, जैसे नए चक्र में इसको कहते हैं कि कर्तृनय और अकर्तृनय, तो कर्तृनय से तो वो स्वयं अपने राग परिणाम का कर्ता कहा हुआ, फिर अपेक्षा बदल दे, अपेक्षा सहित जब कथन हम ख्याल में लेते हैं तो हमें वस्तु का सही निर्णय हो जाता है। कर्तृनय यानी करने वाला, पर का करने वाला उसको कर्तृनय नहीं कहते, यानी आत्मा पर का किसी अपेक्षा से पर का करता है ऐसा नहीं बताया, किसी भी अपेक्षा से पर का करता नहीं है, परंतु जो अपने में विकार हो रहा है उसका भी कर्ता आत्मा स्वयं है ऐसे वो कर्तृनय बताता है। अब अकर्तृनय क्या बताता है, वो उसका कर्ता है ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसका स्वामित्व नहीं है। अब जिस अपेक्षा से यहाँ बात की थी स्वामी जी ने, स्वभाव से करता है नहीं, स्वभाव में उसने अपनत्व स्थापित किया, उस अपेक्षा से वो अपने ज्ञान भावों का करता होगा, राग भावों का नहीं। हाँ, एक ही समय में हमेशा जो नए है ना विरुद्ध अस्थि नास्ति, तो एक समय में अस्थि और दूसरे समय में नास्ति हो जाता है क्या, कि ये पेंसिल है और ये क्लिप है, तो पेंसिल क्लिप रूप नहीं है, पेंसिल पेंसिल रूप है, ये हस्ती है और पेंसिल क्लिप रूप नहीं है, तो ये दूसरे समय में उस रूप नहीं होती कि उसी समय में, ये कथन में क्रम पड़ेगा, क्योंकि कथन शब्दों की ऐसी हम जान तो एक समय में सकते हैं परंतु बताने के लिए उसमें तो क्रम से बताना पड़ेगा, वो तो शब्दों की उतनी क्या उनकी कैपेसिटी नहीं होती ना कि एक साथ सब कथन कर सके। तो ये जो है यहाँ की अपेक्षा क्या है कि वो राग का कर्ता नहीं है, राग का कर्ता है यानी वो राग को किसने किया, हाँ तो है तो उसी की पर्याय में, वो उसकी पर्याय कर्म की पर्याय नहीं है, द्रव्य कर्म की पर्याय नहीं है। जब हम निमित्त की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो निमित्त की अपेक्षा जब कथन किया जाता है, कथन में अकेला करता तो वो नहीं, कर्मक कुछ जीव को राग नहीं कराता है, कर्म अपने में परिणमित होता है, वो अपने स्वयं के पर्याय का करता है। और जहाँ जीव अपने राग द्वेष करता है तो स्वयं अपने राग द्वेष का करता है। कर्म ने राग कराया ये तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए या अपना उससे भिन्नत्व बताने के लिए कहे जाते हैं कि राग मेरा है ही नहीं, कर्म का है, वो पुद्गल है, वो मेरा है ही नहीं। क्यों? जैसे कोई पुत्र नालायक निकलता है तो क्या कहते, ये पेपर में आउट करते हैं, आज से हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, ये नालायक है और ये जो जो कुछ करेगा उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। ये तो क्या होता है कि बच्चा जाएगा कहीं कर्जा निकालेगा, कुछ भी करेगा, तो माँ बाप के पास आते हैं, देखो तुम्हारे बच्चे ने हमारे से इतना कर्जा लिया है, दे दो। तो पेपर में एकदम जिसने जन्म दिया है वो माँ बाप भी क्या कहते, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा बेटा नहीं है आज से, तो ये कुछ कुछ करेगा उनसे हमारा कोई संबंध नहीं। वैसे अपना स्व में स्व शुद्धात्मा में अपना तो स्थापित करता है जी, तब कहता ये जो राग है ना वो कर्म के कारण हुआ, मेरा है ही नहीं, उसका लक्ष्य छुड़ाना है। परंतु ज्ञान तो जाए ना जानेगा कि अपनी पर्याय में अपनी ही कमजोरी से हुआ, दोनों को यथार्थ जानना पड़ेगा और अपना तो स्व शुद्धात्मा में लाना है। ये श्रद्धा और ज्ञान में डिफरेंस होता है। ज्ञान तो सबको जैसा है वैसा उसका निर्णय कर लेता है और श्रद्धा का विषय अकेला स्व होता है, उस स्व में वो किसी को शामिल नहीं कर सकता। श्रद्धा ने क्या अहम किस में स्थापित करना है, जो शुद्धात्मा जो है वो त्रिकाल एक रूप जो भाव है, जो गायक स्वभाव कहते हैं, उसमें तो राग है नहीं, क्योंकि राग तो कम होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, नष्ट होने वाला है, तो वो तो अपना हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं त्रिकाल एक जैसा भाव हूँ और जो कैपेसिटी जो है हमेशा रहने वाली, निगोद के पर्याय में हो या सिद्ध के पर्याय में, जो एक सदृश अपना स्वभाव है, उस स्वभाव की दृष्टि करना, दृष्टि करना ने उसमें मैं हूँ ऐसा अहम स्थापित करना, वो श्रद्धा का काम होता है। अकेले आपने बताया और हमने हाँ हाँ किया वो श्रद्धा नहीं, ये शास्त्रीय भाषा अभी सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं उसमें अपनत्व किसमें है, हम कहते हैं ये अंतरात्मा है, यानी जो आत्मा है उसी में आत्मापन स्थापित करना, वो अंतरात्मा, ये शुद्धात्मा में। बहिरात्मा है बाह्य पदार्थ शरीर आदि राग आदि, इसमें अपनत्व अहमपना स्थापित करना, इसका नाम है बहिरात्मा। और परमात्मा ने जैसे अपने में अहमपना स्थापित करना, उस रूप पर्याय में भी हो जाना, वो शुद्धता प्रकट करना, वो हुआ परमात्मा। जैसे यहाँ जो अपेक्षा, हमेशा अपेक्षा ख्याल में लेना, अभी ये जो बताए ना यहाँ देखो, उस सब परिणाम के नहीं, राग का कर्ता नहीं, हाँ देखो उस अपेक्षा से वह राग आदि का भी अकर्ता है, किंतु अपने समय दर्शन ज्ञान आदि निर्मल क्रमबद्ध परिणामों का तो वह करता है। अभी यहाँ पर्याय के साथ वाला द्रव्य नहीं कि द्रव्य अपने ही परिणामों का, निर्मल परिणामों का करता है। अब जब ये निर्मल परिणामों की भी दृष्टि छुड़ाना होगा, अगर वह जैसे नियम सार में बात आती है, अरे ये पर्याय, ये भी पर्याय है, निर्मल पर्याय, उनकी भी दृष्टि यानी शुद्धात्मा का लक्ष्य करते समय उनकी भी दृष्टि छूट जाएगी, उनमें भी अपनत्व छूट जाएगा, उसका भी लक्ष्य नहीं रहेगा। जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो उसको बराबर पकड़ना। तो हमारे ऐसे, अरे एक बार ऐसा कहते ऐसा होते थे, अब यहाँ क्या बात करे, वो किसका करता है, अपने सम्यक दर्शनादि रूप निर्मल पर्यायों का आत्मा स्वयं करता है। देखो कि राग का तो अकर्ता बताया और अपने सम्यक दर्शन ज्ञानादि निर्मल, और अकेला निर्मल नहीं कहा, निर्मल क्रमबद्ध परिणामों का करता है। देखो क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं करता बिना हुए ही वह परिणाम हो जाता है। दीपाली आपके प्रश्न का उत्तर आया, यानी निर्मल परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो निर्मल परिणाम यानी सम्यक दर्शन भगवान ने देखा है तब उत्पन्न होगा, हमारे किए भी नहीं हो गए ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता हुए बिना, ऐसा लेना, बिना हुए लिखा ना, यानी आत्मा स्वयं करता तो हुआ नहीं है और अपने आप ही निर्मल परिणाम हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। यानी आत्मा जब स्वयं करता होकर अपने निर्मल परिणाम करता है, स्वयं करता होकर अपना ज्ञान आदि रूप परिणमित होता है, अपने समय दर्शन रूप परिणमित होता है, तब वो उसका कर्ता होकर ही परिणमता है। वो अपने आप ऐसे ही हो गया, भगवान ने जाना इसलिए हो गया, ऐसा नहीं। जब वो स्वयं कर्ता होकर परिणमता है तब निर्मल पर्याय परिणमित होती है, वो प्रकट होती है। देखो फिर पढ़ती हूँ, क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं कर्ता बिना हुए ही वह परिणाम हो जाता है, यानी आत्मा ने आत्मा कर्ता हुआ ही नहीं और परिणाम हो गया। मिट्टी खिलौनों रूप परिणमित हुई नहीं और खिलौना बन गया, तो काय का बना? मिट्टी ही वहाँ खिलौने रूप परिणमित हुई है, तो मिट्टी स्वयं कर्ता होकर वो खिलौना रूप हो गई। वैसे आत्मा स्वयं कर्ता होकर अपना समय दर्शन आदि रूप पर्याय का वहाँ वो पर्याय बन जाती है। देखो ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ, यह निर्मल ज्ञान भाव लेना, यानी उसमें सब निर्मल पर्याय जान लेना, यह ज्ञान की चर्चा। तो अपना जो निर्मल ज्ञान भाव है करता हुआ, करता हुआ ये ज्ञान भाव कौन लेना? गुण लेना के पर्याय लेना? अभी पहले बोलो गुण। हाँ, आपसे क्या कहना है? पर्याय। आप क्या कहते हैं? हाँ, पर्याय। क्यों? करता हुआ है ना, जो अभी हो रही है। ज्ञान भाव हमेशा नहीं है। ये कौन से ज्ञान भाव की चर्चा है? करते हुए ज्ञान भाव की। देखो आत्मा ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ, यानी अभी उसने नया किया, ये ज्ञान भाव किया, जो किया वो क्या होगा? पर्याय होगी, क्योंकि जो है वो तो हमेशा है। जो ध्रुव रूप भाव की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ ज्ञायक भाव की चर्चा नहीं है। वो ज्ञायक भाव तो हम ज्ञानी को, यानी ज्ञानी का जो पूरा द्रव्य है उसको हम कहेंगे ये ज्ञानी, ज्ञायक भाव। तो ज्ञायक भाव अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ, यानी अपने पर्याय को करता हुआ, यानी उसकी जो निर्मल ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप जो पर्याय प्रकट हुई, यानी ज्ञानी ने अपनी सम्यक ज्ञान रूपी पर्याय प्रकट की, तो उसको करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है। तो ज्ञानी किसका कर्ता होगा? ज्ञान का। ज्ञान का यानी ज्ञान रूप जो पर्याय निर्मल ज्ञान है, यानी ज्ञानी सम्यक ज्ञान का कर्ता है। और मिथ्या ज्ञानी किसका कर्ता होगा? अज्ञान का या मिथ्या ज्ञान का कर्ता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है। अब ज्ञानी के पर्याय में अज्ञान है ही नहीं, तो वो अज्ञान का कर्ता कैसे होगा? और अज्ञानी के पर्याय में ज्ञान है ही नहीं, तो ज्ञान का कर्ता कैसा होगा? और जिस समय वो सम्यक ज्ञान पहले समय में प्रकट होगा, तो उस समय हम क्या कहेंगे? अज्ञानी ने सम्यक ज्ञान प्रकट किया, ऐसा कहेंगे? उस समय तो ज्ञानी है, उस समय तो हम उसको कहेगा ये ज्ञानी और इसमें ज्ञान का ज्ञान भाव का कर्ता हुआ। पहले समय वो अज्ञानी था, वो अज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता था। दो समयों की बात करने के लिए हम ऐसा कहेंगे मिथ्यात्वी जीव ही अनाय, हम कहते हैं उपशम समय तो कौन प्राप्त कर सकता है? प्रथम उपशम तो मिथ्यात्वी जीव प्राप्त कर सकता है। वो क्या? दो पर्याय, पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्था दोनों को मिलाकर कथन किया कि जो पूर्व में मिथ्यात्वी था वही अब सम्यक्त्वी हुआ। यहाँ कर्ता और करने वाला एक ही समय की बात है। ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का करता है। जब वहाँ पर्याय में अज्ञान था तब तो अज्ञानी ही था, तो वो अज्ञानी ही उस अज्ञान भाव को निर्माण किया। अब समझो वो करण लब्धि का अंत समय था, उस समय वो मिथ्यात्वी है, अज्ञानी है, और उसमें पर्याय में भी मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व का करता वो मिथ्यात्वी था। अगले समय में सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, वो सम्यक दर्शन का करता वो स्वयं सम्यक दृष्टि की है। इसलिए हैं क्या कहते कि ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को करता हुआ उसका करता होता है। यानी जिस समय वो अज्ञानी है उस समय वो अज्ञान करता है, या उसके अज्ञान पर्याय को देखकर ही हम उसको अज्ञानी कह रहे हैं। ज्ञानी कब कहते? जब वो पर्याय में ज्ञान समय ज्ञान प्राप्त हुआ तब हम उसको ज्ञानी कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध परिणाम का करता है, तो केवल ज्ञान पर्याय का कर्ता कौन होगा? केवल ज्ञानी होगे, सर्वज्ञ होगे। तो केवल ज्ञान का कर्ता हम श्रुत ज्ञानी को कहेंगे। श्रुत ज्ञानी कौन से ज्ञान का कर्ता होगा? हाँ, श्रुत ज्ञानी उसके पर्याय में कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान है, तो वो अपने शुद्ध ज्ञान का करता है। केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान पर्याय का करता है, यानी जो पर्याय हुई उसी पर से हमने उस गुण को केवल ज्ञानी कहा। जीव तो वही है जो बारहवें गुण स्थान में जो शुद्ध ज्ञानी था, वही तो तेरहवें गुण स्थान में हमने उसी जीव को केवल ज्ञानी कहा। केवल ज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि पर्याय में अभी केवल ज्ञान हुआ है, तो उस पर्याय की तरफ देखते हैं हमने उनको केवल ज्ञानी कहा। देखो इसी बात को अगले पेज पर, इसी बात को यदि वस्तु स्वरूप की ओर से विचार करें, वस्तु स्वरूप यानी वस्तु व्यवस्था कैसी है उसकी ओर से अगर हम उसका विचार करें, तब भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्योंकि नित्यता के समान परिणमन भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। पहले लिखा ना कि प्रत्येक द्रव्य अपने क्रमबद्ध परिणामों का करता है, और वस्तु स्वरूप की ओर से उसी बात का कथन करना है तो क्या कहते हैं कि जैसे नित्यता वस्तु का हमेशा स्वभाव है ना, उसका वस्तु हमेशा नित्य 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 रहती है। वस्तु अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, यानी अनादि अनंत है। क्यों है? कि वो स्वतः सिद्ध है। पंचाध्याय में पढ़ा था हमने कि वस्तु स्वतः सिद्ध है, इसलिए वो अनादि निधन है। वो है यानी उसका नित्य टिकने वाला स्वभाव ही है। तो जैसे नित्य 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 का जैसे वस्तु का स्वभाव है, वैसे नित्यता तो है ही है, उसी के साथ परिणमन 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 भी उसका स्वभाव है, यानी परिणमन करते हुए वो नित्य है ही रही है। अभी बच्चा है छोटा, बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, तो वो वही पर्सन है ना, पर्सन तो चेंज नहीं हुआ, उसकी अवस्थाएं बदली, तो वो पर्सन नित्य रहते हुए भी वो परिणमन वो जो कुछ चेंज था वो भी उसी के साथ साथ बना है। तो नित्यता के साथ परिणमन भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, यानी परिणमन एक समय का है, परंतु परिणमनशीलता परिणमन करने का स्वभाव द्रव्य में नित्य है क्या अनित्य है? हाँ, नित्य, क्योंकि हर समय परिणमन कर रहा है। हर समय परिणमन करना, हर समय परिणमन करना, हर समय परिणमन करना, ये उसका जो स्वभाव है वो नित्य है। जैसे उत्पाद रूप व्यय ध्रुवत्व एक गुण है कि हर हमेशा उत्पाद रूप व्यय रूप और ध्रुव रूप रहने का उसका स्वभाव है, तो उत्पाद वाला स्वभाव कायम है, व्यय वाला स्वभाव भी कायम है, और ध्रुवता वाला भी स्वभाव, क्योंकि हमने स्वभाव को लिया है। एक विशिष्ट पर्याय का उत्पाद और विनाश है वो तो क्षणिक है, परंतु वो जो उत्पाद व्यय होने का जो स्वभाव है वो त्रिकालीय है, हमेशा वो उत्पाद व्यय ध्रुव करता रहेगा। वैसे यहाँ क्या कहते हैं, ये परिणमन करने का उसका जो स्वभाव है वो नित्य है, यानी जैसे नित्यता भी स्वभाव है वैसा परिणमन भी द्रव्य का स्वभाव है। और जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसके होने में पर के सहयोग की क्या आवश्यकता है? देखो क्या कहते हैं, स्वभाव उसी को कहते हैं, स्वभाव कहते ही उसको है। किसको स्वभाव कहेंगे? कि जिसमें जिसके होने में परी के सहयोग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो ये निमित्त का भूत जितना सवार होता है हमारे सिर पर, कैसा किया वैसा हुआ, वैसा किया वैसा, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, अभी अभी तो क्या क्या बात है, ये ऐसे वेव निकलती है वस्तु में से तो इतना वहाँ ऐसा होता है, जहाँ कत्ल खाने है वहाँ से ऐसे वेव निकलती है तो वहाँ भूकंप होते, ऐसे नई नई ऐसी ऐसी बातें बातें हमने अभी सुनकर आए, अभी गए थे ना, ये तो बहुत चलता है। हमने ऐसा शांति मंत्र मना तो यहाँ अभी हमारे कुटुंब की शांति हो जाएगी, बहुत चलता है। तो बचपन से हम तक हम करते आए, जैसे हमने बहुत सारे लड्डू पेड़े ये सारी मिठाई सारा खाना रखा है भगवान के सामने, और हम भगवान को गिड़गिड़ा रहे, क्या भगवान हमारी भूख शांत कर दो, हमारी भूख शांत कर दो, हमारी भूख शांत कर दो, खाना तो कुछ नहीं है, कब शांत होगी? होगी ना कि नहीं होगी? अरे इतना हम मंत्र बजा बोल रहे थे भगवान के सामने कि हमारी भूख शांत कर दो, होगी? सारी मिठाई सारे पकवान, और छोटा बच्चा भी एक साल का आएगा जाके उसमें से कुछ खा लेगा तो उसकी भूख शांत हो जाएगी, और ये खा ले ये अपने यहाँ वो बहुत सतर्क चलता है। और उसमें क्या हम बोल रहे हैं, किसको कथा सुखे, कोई 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 उसमें उसमें तो एक वाक्य आता है कि स्त्री स्त्रियों की बुद्धि हो जाओ, यानी उसमें आता है पुत्र पौत्र की बुद्धि हो, धन संपत्ति की बुद्धि हो, स्त्रियां बढ़ जाओ, और ये भी और उसी की औरतें कह रही थी हाँ तथास्तु, क्या तथास्तु कि उनके मरज जाके और औरतें लाए तो उनको तथास्तु, तो हम क्या कह रहे हैं, किसको तथास्तु कह रहे हैं, किसको क्या, कुछ नहीं। और ये शांति होने वाली है, ऐसे शांति की भावना आती है, परंतु वो सामने जब हम वितराग भगवान ने क्या बताया है, वो शांति कैसे उत्पन्न होगी, वो तत्व का निर्णय करेंगे तो कसा शांत होगे, तभी शांति होगी। अकेला मेरी शांति हो कहने से कोई शांति नहीं होने वाली, सारा निमित्त के ऊपर ऐसा कि ऐसा हुआ उसने ऐसा उसके तरफ से ऐसे देव जाते ये हम ऐसा समय करिए हमारे घर के पुण्य है तो हमारे सब अभी कार्य अच्छा हो रहे, अरे घर की काहे की पुण्य, घर में कोई कर्म है, ऐसी ऐसी बातें चलती है सारी। अभी किसको समझाए, कितना समझाए, क्या बेटा क्या कहते, ये निमित्त का और इसका तो इतना झमेला है कि बस सारी ही वृत्ति कहाँ पड़ी है, निमित्त के ऊपर। ज्ञान को भी हमने निमित्त से होना माना, सामने चीज नहीं है तो हम कैसे जान सकते, ऐसा आता है ना। देखो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की तो कोई निंदा है ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के ऊपर ये हम हमारा जो प्रहार है वो उस मिथ्या मान्यता के ऊपर है, किसी व्यक्ति की तो निंदा नहीं, क्योंकि जो सारे मिथ्यात्व थे पहले पूर्व अवस्था में वही तो समझ को प्राप्त करके ज्ञानी हो गए, तो ये जो मिथ्यात्व भाव है वो कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, अपने ही पर्यायों में अपने ही मान्यताओं में कहाँ कहाँ है, तो ये सारा ही जो निमित्त का बल आता है कि ऐसा ऐसा हम करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, बस ये निमित्त का ही सारा भूत सवाल। तो यहाँ क्या लिखते हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है उसके होने में यानी उसके रहने में टिकने में भी नहीं और परिणमन में भी नहीं, तो उसके होने में पर के सहयोग की क्या हो सकता है। अब ये पंचाध्याय वाला श्लोक याद करो, स्वतः सिद्ध बताया, अनादि निधन बताया, और आगे क्या बताएंगे, स्वसहाय, स्वसहाय का अर्थ होता है अपनी सहायता से टिका हुआ है, अपनी सहायता से परिणमता है, उसको पर की सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो जिसको ये सुनते हैं तो उनको ऐसे अरे निमित्त तो है ना कहकर भी दृष्टि तो निमित्त की ही तरफ बनी रहती है, निमित्त होता है उसका तो ज्ञान, वो तो सर्वज्ञ नहीं बताया ना, निमित्त का स्वरूप भी सर्वज्ञ के ज्ञान में आ गया था कि नहीं आया था, तो निमित्त को निमित्त रूप से नहीं जानते हुए निमित्त का भी नाम लेकर कर्ता होने का वहाँ अभिमान पुष्ट होता है, अकेला निमित्त का ज्ञान नहीं करते परंतु निमित्त के कारण हुआ, ऐसे पूरी दृष्टि निमित्त के ऊपर पड़ी। और ये जो सारे जो वस्तु व्यवस्था के नियम है, क्रमबद्ध पर्याय कहो, निमित्त उपादान कहो, निमित्त का जैसा स्वरूप है, उपादान से कैसे कार्य होता है, कोई दो भिन्न द्रव्य एक दूसरे में कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल, जब तक स्वतंत्रता अपने बुद्धि यानी जो हमारा उपयोग चल रहा है उसमें जब ये निर्णय नहीं होगा तब तक तीन काल में समय दर्शन नहीं होने वाला। ये इतनी आसान चीज है परंतु अभी अपने पूर्व की मान्यताएं छोड़ने को जो ऐसा है ना, अभी हमने आज तक ये किया कैसे छोड़े, तो ये निमित्त के ऊपर जब तक उसकी दृष्टि पड़ी है तब अपनी उपादान शक्ति के ऊपर वो कैसे देखेगा, क्योंकि निमित्तों में अभी उलझा रहा है सारा। तो जब दो द्रव्यों में भिन्नता ख्याल में आती है तो दूसरे द्रव्य की ओर ताकने की जरूरत क्या है इस चीज को। देखो क्या कहते हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है उसके होने में पर के सहयोग की क्या आवश्यकता है, यानी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यदि द्रव्य को अपने परिणमन में पर की अपेक्षा हो तो फिर उसका वह स्वभाव ही क्या रहा, यानी जिसको पर की सहायता की, कोई मुझे ऐसा करके मेरी सहायता करे तो मेरा परिणमन हो जाए, कोई दूसरा शांति प्रदान करे, भगवान वितराग मुझे शांति दे दे तो मेरी शांति हो जाए, ऐसी जिसमें पर की अपेक्षा है, कर्म स्वयं हट जाए तो मुझे सम्यक दर्शन हो, ऐसी जिसको पर की ओर ताकने की जिसमें बुद्धि है, तो कहते हैं कि वो स्वभाव ही क्या रहा, यानी ऐसा कोई दूसरे की सहायता से होता ही नहीं है, जीव ने अपने अज्ञान से माना है, मानता क्या है दूसरे के कारण होगा परंतु मानने वाले का भी कार्य दूसरे के कारण होता ही नहीं है, मानता है अज्ञान, वो उसका अपना मिथ्या तो है और वो भी अपने कारण से होगा। जो स्वयं वो तत्व निर्णय करेगा तो उसका अज्ञान भाव मिथ्या तो भाव नष्ट हो जाएगा। तब हम कहेंगे उसके ज्ञान भाव का कर्ता भी वो स्वयं है। देखो क्या कहते हैं कि यदि द्रव्य को अपने परिणमन में परकी अपेक्षा हो तो फिर वह उसका स्वभाव ही क्या रहा। द्रव्य शब्द ही द्रवणशीलता, द्रवणा देखे हम कहते लिक्विड है, यानी द्रव है। द्रव है क्यों, किसको कहते हैं, जो बहता है, जो द्रवता है उसको द्रव्य कहे, द्रव कहते हैं। सॉलिड लिक्विड और गैसीय स्टेटस है ना, जिससे हम पढ़ते है, तो लिक्विड कहते हैं किसको है, जो फ्लो होता है उसको कहते हैं हम, वो लिक्विड है, फ्लूइड है, फ्लूइड कहते हैं ना, फ्लूइड फ्लूइड शब्द कहते हैं उसमें जो फ्लुएबिलिटी है उसमें, तो उसके अपेक्षा उसको हमने फ्लूइड कहा। वैसे यहाँ द्रव्य किसको कहा, जो द्रवता है, द्रवता है का अर्थ जो परिणमनता है, उसका परिणमन होना सहज प्रवाह रूप, हम प्रवाह की अपेक्षा उसकी ओर, पहले एक परिणमन था फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ फिर चौथा हुआ फिर पांचवा हुआ, ये जो उसका परिणमन होते 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 रहना इसको कहने द्रवना, यानी परिणमित होना। देखो क्या कहते कि द्रव्य शब्द ही द्रवणशीलता, यानी परिणमनशीलता का द्योतक, द्योतक यानी बताने वाला। वो द्रव्य शब्द क्या सूचन करता है कि परिणमनशील द्रव्य जो है, वस्तु जो है, प्रत्येक पदार्थ है वो परिणमनशील है, ऐसे वो बता रहे। जो स्वयं द्रव्य परिणमे उसी को द्रव्य कहते हैं। वस्तु क्यों कहते हैं मालूम है, वस्तु शब्द कैसे तैयार हुआ, जैसे अभी द्रव्य शब्द कैसे तैयार हुआ कि जो द्रवता है परिणमित होता है उसको हमने द्रव्य कहा, तो उस द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं। तो वस्तु क्यों कहते हैं, कहाँ ठहरता है, कौन बसता है, कहाँ बसता है। देखो गुण पर्याय जिसमें बसते हैं उसको वस्तु कहते हैं। तो गुण पर्याय वत् द्रव्यम कहा ना, तो ये वस्तु शब्द वसना यानी वो वस्तु यानी उस द्रव्य में गुण पर्याय बसते है, या द्रव्य या वस्तु अपने गुण पर्यायों में बसती है, ऐसा भी लेते दोनों तरफ से बता सकते हैं। देखो प्रत्येक द्रव्य में अगला पैराग्राफ, एक द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है शक्ति है, आप तो सब पढ़ी हुई सिद्धांत प्रवेशिका, ये पहले बोलो द्रव्यत्व गुण की परिभाषा याद है आपको, डेफिनेशन बोलो ट्राई करो, अभी हमने देखा था ना द्रव्यत्व, हाँ बराबर निरंतर परिणमन होता रहे, कि द्रव्य में जो ये परिणमन होता है वो कभी हुआ फिर अब उसने विश्राम किया आधे पौने घंटे, फिर एक बार परिणमन हुआ, फिर दो चार साल चले गए फिर परिणमन हुआ, ऐसा नहीं, हर समय उसका परिणमन 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 चलता है। वो परिणमन वैसा का भी वैसा होगा या अन्य प्रकार का भी होगा, परंतु वो नया नया होगा। जब वैसा का वैसा परिणमन आता है तो हमें लगता है वही परिणमन, अरे देखो जो कल भी ब्लू थी पेंसिल अभी भी ब्लू है, कल जैसी थी अभी भी वैसी है, कहाँ परिणमन हुआ। तो परिणमन का अर्थ ऐसा नहीं कि ये ब्लू चेंज होकर लाल हो तो ही परिणमन, ऐसा नहीं है। ये अभी समझो ये चार साल से ये ब्लू 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 ऐसे ही रह रही है, तो इसका ये परिणमन हर समय चल रहा है। इसका आकार का भी परिणमन ऐसा कि ऐसा ऐसा कि ऐसा ऐसा कि ऐसा हो रहा है, परंतु ये हर समय नया 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 है। ये आड़ा आकार चेंज होकर ऐसा कुछ टेढ़ा हो गया तो ही वो परिणमन हुआ, ऐसा नहीं है। उस आकार ही ऐसा का ऐसा रहना वो भी उसका परिणमन ही है। शुरू में हम समझाने के लिए समझाते थे कि ये सीधी होंगे ये आड़ी होगी उसका परिणमन ऐसा हुआ समझाने के लिए, परंतु ये अगर सीधी रहे 10 मिनट तक तो ये उसका परिणमन हर समय है। तो ये द्रव्य, हाँ प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्य तो नाम का सामान्य गुण है शक्ति है, उसके कारण ही द्रव्य परिणमनशील है, यानी द्रव्य में ही स्वयं ऐसी शक्ति है कि वो परिणमन करे। परिणमनशीलता द्रव्यता सामान्य धर्म है, सहोद्रव्य में पाया जाता है, सहज धर्म है, सहज है वो, उसका सहज परिणाम है, वस्तु का परिणाम होना है उसका अपना स्वयं का सहज धर्म है, उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक धर्म है, पर निरपेक्ष धर्म है, पर वस्तु सामने निमित्त हो तो यह जीव या जीव या अन्य द्रव्य भी। अभी जीव को ज्ञान है तो उसको ऐसा लगता है कि जब मैं सोचूं तो मैं परिणाम करूँ और जैसा सोचूं वैसा परिणाम करूँ, तो उसका ऐसा कर्तृत्व का अभिमान हो जाता है। कभी जिन द्रव्यों में ज्ञान नहीं है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, इनमें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो स्वयं परिणाम कर रहे हैं कि वहाँ वो ज्ञान वाला जीव जाएगा तो उनका परिणाम होगा। सो द्रव्य जो है उनमें अपना अपना परिणाम हर समय चल रहा है, तो वो परिणाम उनके अपने कारण से चल रहा है, उनमें ही ऐसी अंगभूत शक्ति है कि परिणाम स्वयं का सहज हो। सहज का अर्थ ही होता है वो अपने स्वभाव से हो, कोई दूसरा आकर परिणाम करावे ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। जब प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने से द्रव रहा है, अपने नियमित प्रवाह में बह रहा है, सहज क्रमबद्ध परिणाम रहा है, क्या क्या बातें कही, एक ही बात को अलग अलग भाषा में बताया कि वो अपने से द्रव रहा है यानी अपने से परिणाम कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो कैसा हो रहा है, तो अपने नियमित प्रवाह में बह रहा है, प्रवाह यानी पर्यायों का जो क्रम सतत चल रहा है उसमें क्या था, अपने परिणामों में बह रहा है, जैसे वो प्रवाह की उपमा दी वहाँ। और सहज क्रमबद्ध परिणाम रहा है, क्रमबद्ध यानी जो होने वाली निश्चित पर्याय होने वाली, यानी वो द्रव्य का ही ऐसा वो स्वभाव है कि उस समय उसी पर्याय को करे, ऐसा वो द्रव्य का ही अपना स्वभाव है, वो किसी अन्य कारण आया इसलिए उसको ऐसा परिणाम करना पड़ा ऐसी बात नहीं है। हम कहते ना क्या कि हमारे ऐसे संयोग हमारे ऐसे है कि हम अभी शास्त्र में नहीं आ सकते, तो कहाँ दृष्टि पड़ी हमारी सारी संयोगों पर। अभी ऐसी प्रतिकूलता है, अभी हमारा दुकान कोई संभाले तो हम अभी यहाँ शास्त्र में आ सके, अभी चलो बेटे की शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी तो हम निरंत हो जाए, तो फिर हमें कोई बाधा नहीं है, फिर हम शास्त्र में आ सकते। हर एक की कोई ना कोई ऐसे बहानेबाजी करती है। तो क्या कहते हैं, सहज क्रमबद्ध परिणाम रहा है, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि वह अपने क्रम को भंग करे। ये हमारा जो प्रश्न था कि हम अपने पर्याय को फेर सकते हैं क्या नहीं सकते, तो उसका उत्तर दिया कि पहले पर्याय कौन कर रहा है, तो द्रव्य स्वयं ही कर रहा है। तो द्रव्य स्वयं अपना परिणाम करता है, ये तो उसका स्वभाव हुआ, और कौन से समय में कौन सा परिणाम होना है यह भी द्रव्य का ही अपना स्वभाव है। स्वभाव में ही ये सारी बातें पड़ी है कि अनादि काल से अनंत काल तक की कौन सी पर्याय कब होनी, यह स्वभाव उस द्रव्य का ही अपने में पड़ा है, जो पूरा उसका प्रवाह निश्चित है। तो जब ये सारा निश्चित है तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि वह अपने क्रम को भंग करे, तो फिर वो पर्यायों को पलटना क्यों चाहता है। हमने स्वभाव की तरफ देखा, स्वभाव कैसा है, परनिरपेक्ष है, और कैसा है कि जिस क्रम में और जो पर्याय होनी है वो तो अनादि अनंत की निश्चित है। वो निश्चित क्यों है, क्योंकि द्रव्य का ही स्वभाव है, हम क्या करें। अरिहंत ने भी उसने कुछ नहीं किया, हमारे अपने में अपने ही द्रव्य में ऐसा स्वभाव है कि वो अनादि की से अनंत काल तक की सारी पर्याय सुनिश्चित अपने द्रव्य स्वभाव के कारण है। तभी अभी जो स्वभाव ही है, अभी आप किसको फेरना चाहते, स्वभाव उसे ही कहते हैं जिसको हम कभी फेर नहीं सकते। तो हमारे पर्यायों का जो प्रवाह है, निश्चित क्रम है, वो अपने स्वभाव के कारण है, द्रव्य स्वभाव ही हमारा ऐसा है, तो किसको चेंज करना है। यानी अर्जंत ने जाना इसलिए हम उस पर्याय रूप से नहीं परिणमित हो रहे, हमारे द्रव्य में ऐसा स्वभाव है क्या कि कौन से समय में कौन सी पर्याय होनी है, हमारे द्रव्य में स्वभाव पड़ा है। तो क्या कहते हैं कि ऐसी कौन सी आवश्यकता है कि हम अपने ही क्रम को भंग करें। जब मारी की को चौधरी विश्वास तीर्थंकर होने की इतने गारंटी भगवान के ज्ञान में आई थी, तो उनको ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि उनको दूसरा तीर्थंकर होना था, है ना। वस्तु के स्वरूप में ऐसा क्या व्यवधान है
کہ وہ اپنی چال بدلے.
کیوں کوئی جب کچھ کاریہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں کرنا چاہتے ہو, اس میں کچھ اپنا تو ادیش چاہیے نا, تبھی تو ہم کچھ کاریہ کرتے. ایسے کہتے ہیں مورکھ بھی پرورتن نہیں کرتے کسی کاریہ روپ سے, وہ بھی اتنا سوچتے کہ میں کیوں کروں. تو ویسے ہم اپنی پریائے بدلنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے, وہ کرم بھنگ کیوں کرنا چاہتے اور کیوں بدلے, اسے کیا ضرورت ہے اپنی چال بدلنے کی. یعنی دربے کو تو کیا ضرورت ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں, وہ تو سارا ہی نشچت ہے اس کا کرم, وہ سوئم ہی پرینمت ہو رہا ہے. اور اکیلا پرینمت ہوتا ہے اتنا ہی نہیں, اس کا پورا پرواہ ہی نشچت ہے. ایسا وہ سارا پرواہ اس دربے کا ہی انگ ہے. اپنے ایک 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 کے بعد وشیشت پریائے ہونے کا ترکال کا جو پورا نشچت پرواہ ہے وہ نشچت ہے, وہی تو اس دربے کی اسپیشلٹی. ایسے ہم کہنے کے لیے تو سارے جیو دربے کہیں گے, کتنے جیو ہے انت ہے, پرنتو وہ انت جیو کے ایک ایک دربے میں, وہ ایک ایک جیو میں اس کی سارے انت انت پریاوں کا کرم پورا نشچت ہے, وہی تو وہ دربے. نہیں تو آپ کا جیو دربے میں جیو دربے اس میں کچھ بھنتا ہوگی کہ نہیں. تو جب ہم سوال تو یہ سارا ہی پورا پرواہ اپنے میں نشچت ہے. تو کیسے کہ بدلے بھی کیسے, جبکہ پرتیک دربے کی پرتیک پریائے سو اوسر پر ہی ہوتی ہے, اس میں کوئی چینج نہیں. کیوں ہوتی ہے, دربے ہی اپنے پریائے روپ سے پرینمت ہوتا ہے. اور اب ہم یعنی ہم پلٹنا چاہتے ہیں اسے جب کہیں گے تو ہم اپنے کو دربے مان رہے کو منشیہ مان رہے, اتنا تو سوچو ذرا کہ ہم نے اپنے کو دربے مانا, میں جیو دربے ہوں ایسا مانا, ایسے مانتے وہ پریا پلٹنے کی بھی بدھی چھوٹ جائے. میں منشیہ ہوں اور مجھے ابھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے ایسا, یہ سارا کیونکہ مول میں ہی میں کون ہوں اس کو مانا ہی نہیں برابر. تو یہ سارے آگے کے پرشن کب کھڑے ہوتے کہ میں دیپالی ہوں یا میں اجولا ہوں یا میں کوئی بندا بین ہوں اور مجھے وشیشت بات کرنی ہے, تو پہلے تو میں ہی غلط مان, تو میں نام کا کوئی انت دربیوں کا پنڈ بھی ہو کر میں نہیں ہوں. تو منشیہ جب اپنے کو منشیہ روپ سے میں مانتا ہوں مانتا ہے تو اس میں کس کس کو لیا, ایک تو جیو دربیہ اور یہ انت انت سارے شریر سمبندی اوتارک بدل پرمانو ہے کرم سمبندی سارے ہے, یہ سارے تیس ورگنا ہے یہاں بھاشا ورگنا ہے ساروں کو اپنا اکٹھا کر کے اس نے یہ میں ہوں مانا. اب اس میں کس کی پریائے چینج کرنا چاہتا ہے, میں جس کو مانا ابھی کس کی پریائے چینج کرے گا, اتنے انت انت دربیوں میں وہ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اپنے کو جب میں ماننا اس کا صحیح ہوگا, میں ماننا کا صحیح ہوگا ارتھ اسی کا ارتھ سمن درشن ہوگا کیونکہ اس نے میں ماننے میں ہی بھول کر دی. جب اپنا دربے کی پتا چلتا ہے تو جب دربے کا پتا چلے گا دربے کا گیان تبھی سچا کہلائے جائے گا جب یہ بھی گیان اس میں گربھت ہے کہ دربے اپنے سوبھاؤ سے ہے. تو میں بھی ایک دربے ہوں اور میرا سوبھاؤ کیسا ہے, میرا دربے جو ہے وہ ہے نا کہ بدلنے والا ہے. دیکھو پرتیک دربے میں دربے کھیتر کال بھاؤ ہے, ابھی ہم بیٹھے ہیں تو پرتیک کا اپنا اپنا دربے کھیتر کال بھاؤ الگ ہے. اب یہاں سے ہم کچھ کال بعد سدھ بھگوان ہو جائیں گے تو اپنے دربے کھیتر کال بھاؤ میں سے کیا بدلے گا. ہاں دیپالی بھاؤ یعنی انت گنوں کا پنڈ, یہاں بھاؤ کا ارتھ کیا ہے انت گن میں, اس میں کتنے چینج ہو جائے گے, کچھ نہیں بدلے گا. کال میں کیا آتا ہے, دربے تو وہی ہوئے ہیں اور اسنکھیا پردیش بھی وہ ہے. کال کس کو کہتے جو انادی انت پرواہ ہے پورا پرواہ لے. دربے کا جب ہم کال کہتے ہیں تو دربے جس جس پریائے میں ودیمان ہے وہ دربے انادی انت ایسا دکھتا ہے جیسے ترکنی کے گیان میں دکھتا ہے نا, یہ دربے, یہ دربے کہتے اس کا پورا کال اس کے گیان ہے, پوری پریائوں کا گیان ہے. تو وہ کال پورا نشچت ہے. گنگا ندی کو چاہے ہم وہ گنگوتری کے اوپر جا کے دیکھیں یا پھر بنگال کی وہاں سے دیکھیں, جب ہم اس کو گنگا کہتے ہیں تو گنگا یعنی پوری گنگا آتی ہے نا, اس میں اس کا اگم جہاں ہوا تھا وہاں سے جہاں وہ سمندر میں ملتی ہے وہاں تک وہ گنگا ہے. تو آپ کہیں سے بھی اس کو نوٹ کر کے یہ گنگا ہے, الہ آباد میں جا کے کہیں گے یہ گنگا ہے تو گنگا تو پوری گنگا کو ہم کہیں گے گنگا. ویسے دربے ہم اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ انادی انت ساری پریائے اس میں گربھت, اسی کو تو ہم نے کال کہا. تو
तो प्रत्येक द्रव्य का काल निश्चित है, यानी अनादि अनंत प्रवाहों का पूरा जो उसमें क्रम है वो सारा निश्चित है, तभी तो उसको हमने द्रव्य कहा। द्रव्य कहने से अकेला हाँ मैं जीव हूँ और ये पर्याय मेरे से भिन्न है, ऐसा नहीं है। पूरे ही अनादि अनंत पर्यायों का पूरा प्रवाह क्रम जिसमें निश्चित है, उस पूरे को लेकर हम द्रव्य कहते हैं, वो द्रव्य का काल है। तो हम यहाँ बैठे हो या हम सिद्धालय में हो, भविष्य में जाएंगे हम तो हमारा काल वो चेंज होगा। हमारा जो पर्यायों का प्रवाह है पूरा का पूरा अनादि से अनंत तक, हम अभी विशिष्ट पर्याय में अभी हम है विद्यमान है, परंतु हमारा भूत और भविष्य वही रहेगा ना, कि जो पहले से ही जो है वही तो पर्याय होती जाएगी। तो अभी हम देखेंगे भूत से भविष्य, समझो हम ये पेंसिल के बीच में यहाँ सेंटर में ये पूरी पेंसिल, यानी एक प्रवाह है हमारा अनादियन है। तो हम इस पोजीशन पर है नीचे नीचे से एक इंच ऊपर, तो यहाँ से देखते हैं तो भी पूरी पेंसिल इतनी है। अब यहाँ हम ये वाइट है ना उसका ऊपर से एक इंच नीचे, यहाँ पहुंच गए यानी हम सिद्ध बन गए, तो भी हमारा ये पूरा अनादि अनंत प्रवाह वही रहेगा क्या बदल जाएगा? वही है ना, वो पूरा प्रवाह हम अगर ख्याल में लेंगे तो वही है। तो द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमेशा अखंडित रहता है, वही का वही रहता है। यदि हम इसी स्टेज पर अकेली पर्याय की बात करते हैं तो अभी द्रव्य किस पर्याय में विद्यमान है, तो ज्ञान तो सबको जानता है, तो अभी वो समझो वो सिद्ध में की बात है, तो अभी सिद्ध लेना। यदि हम अपनी अभी आज की बात करें तो अभी हम इस मनुष्य पर्याय में विद्यमान है, परंतु हमारा जो पूरा द्रव्य है वो कितना है? अनादि अनंत पर्यायों का क्रम सहित है और ये क्रम निश्चित है। जब हमारा क्रम सारा है ही और निश्चित है, तो अभी हम इसको अभी ये पेंसिल यहाँ से यहाँ तक ये पूरी पेंसिल कहलाती है। अभी इसमें से कौन सी ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा और वो हम बदल सकते हैं क्या? तो जो द्रव्य जिस रूप है ने जीव द्रव्य है, अभी मैं अपनी बात करूंगी, मैं जो हूँ वो मेरा अनादि, यानी ये पेंसिल के ये चेहरे से ऊपर का मैं हूँ वो अनादि अनंत हूँ और मेरे प्रत्येक पर्याय निश्चित है। तो मैं अपना पर्याय क्यों बदलू, क्यों चाहूँ बदलू की बात ही नहीं, बदल सकते ही नहीं, क्योंकि द्रव्य तो इसी तरह से विद्यमान है, अनादि अनंत पूरा द्रव्य इसी रूप से विद्यमान है। अभी इसमें कहाँ चेंज कर सकते हैं हम और क्यों करना चाहते हैं? पहले तो चाहते हैं वो कुछ राग है, तो यानी वो राग कब होगा कि जब मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसे मानेंगे तब, ख्याल आता है ना? तो ये द्रव्य यानी पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसको क्या कहा, द्रव्य को तो द्रव्य तो शुद्धा शुद्ध पर्यायों का पिंड है। अभी हम अशुद्ध अग्नि पूर्व में एकदम देखेंगे, हम निगोद से शुरू किए और जीव वो सिद्धालय में पहुंचेगा, तो वो द्रव्य कैसा है, वो जीव द्रव्य विशिष्ट जीव द्रव्य की बात, वो ये निगोद से लेकर सिद्ध तक की सभी पर्यायों का पिंड है, उसका ये प्रवाह भी निश्चित है। तो उसमें क्यों चेंज करे और अगर करना चाहे तो क्या वो चेंज हो सकता है, इसका निर्णय ही ये पुरुषार्थ है, इसमें कोई पराधीनता नहीं होती। अपने स्वाधीनता का स्वीकार करने में पराधीनता कैसी, बस उसकी स्वीकार करना है। ये तो क्या कहते कि बदले भी कैसे, नीचे से दूसरा करेगा, जबकि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्व अवसर पर ही होती है। जैसे कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जितने तीन काल के समय है उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है और एक एक पर्याय एक एक समय में घटित है। अभी समझो ये तीन काल की पर्याय है और इसमें समय इसी में अभी प्रत्येक, मेरी बात करूँ तो मेरे जीव द्रव्य की यानी मेरी प्रत्येक समय की पर्याय जैसे इसमें घटित किए हुए है ऐसे निश्चित है। तीनों काल की पर्याय, एक पर्याय भी यहाँ से यहाँ नहीं लाया जा सकता, उसका क्रम भी नहीं टूट सकता और उसको पर्याय में भी अभी क्रम तो रहने दो फिर उसमें जरा कुछ हम बढ़ोतरी करेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी जितने तीन काल के समय है उतनी प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय निश्चित है और वो खचित है, खचित यानी जैसे जड़ी हुई है, हीरा जड़ाती है अंगूठी में हीरा जैसे, वैसे वो अपने अपने स्थान पर जैसे किलित है यदि एक पर्याय को अपने स्थान से हटाया जाएगा तो वह स्थान रिक्त होगा। यानी समझे, यहाँ ऊपर के समय की पर्याय यहाँ से हटाकर हम यहाँ लाने चाहते हैं, नीचे पहले हमारे समय दर्शन की पर्याय यहाँ यहाँ ऊपर है और अभी हम इस पोजीशन में हैं, तो हम क्या करना चाहते, यहाँ से उठाकर यहाँ लाना चाहते, तो यहाँ का स्थान रिक्त हो जाएगा, तो वो स्थान रिक्त हो जाएगा। उस स्थान की पूर्ति हेतु यानी वहाँ का स्थान पूरने के लिए दूसरी पर्याय कहाँ से आवेगी? जिस इष्ट पर्याय को आप लाना चाहते हैं यदि उसे अपने स्थान से हटाकर वहाँ लाएंगे तो क्या यहाँ की पर्याय वहाँ ले जाएंगे? जो कि संभव नहीं। वहाँ समय दर्शन की पर्याय अभी मिथ्यात्व की चल रही और वो समय दर्शन के हम मिथ्यात्व पर लाना चाहते हैं, तो क्या आप मिथ्यात्व की पर्याय उस समय दर्शन की पोजीशन में रखना चाहते हो भविष्य में? या वहाँ कौन से वहाँ समय दर्शन की ना, तो फिर वहाँ मुनि की लावे और जहाँ मुनि के वहाँ अरियंत की लावे, क्या यह शक्य है? और क्या होता है या वस्तु स्वरूप में ऐसा कोई है भी कि इतना चेंजेस हो सकते हैं? जो कि संभव नहीं। आखिर वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति क्यों नहीं, बनात परिवर्तन का हट क्यों? ये पूरी हमारी पर्याय निश्चित है, इतना हमने स्वीकार किया सहज, तो यही तो बड़ा सा बड़ा पुरुषार्थ है, तो इसको हट क्यों कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछे, ये बल से उसको परिवर्तन वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा क्यों नहीं स्वीकार करते, उसको क्यों चेंज करना चाहते? हमारा हाथ ऐसा मुड़ता है और ऐसा पीछे नहीं मुड़ता है, तो हम रोज सुबह से प्रैक्टिस करेंगे तो मुड़ेगा, तो हम उसका प्रयत्न भी चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि वो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे वो हाथ उल्टा मुड़ेगा ही नहीं, तो हम उसका प्रयत्न भी कभी नहीं करते। वैसे वस्तु स्वरूप ख्याल में ले लो कि ये ऐसा, ये पूरा हमारा पर्याय का क्रम निश्चित है, तो निश्चित है तो फिर वो क्यों ट्राई कर रहे हैं? इसका अर्थ यहाँ नहीं लगाना कि चलो अभी हम धर्म का ये स्वाध्याय भी छोड़ देंगे, हमारी पर्याय निश्चित है, तो निश्चित है आपके ऐसे भाव हो रहे हैं कि चलो स्वाध्याय करके जब होने वाला है तो हम हमें भी, यानी भगवान कहते हमें भी आपका वो, आचार्य कहते हमें भी आपके पर्यायों का ख्याल कुछ आ रहा है कि अभी आपका काल पक नहीं गया है, अभी समय दर्शन का कुछ बहुत दूर दिखता है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए बात कही थी और उसका अर्थ कहाँ लगाया, चलो स्वाध्याय और छोड़कर स्वच्छंद हो गए और कहाँ जाएंगे, टीवी के सामने या दुकान में जाके बैठे। किसलिए छोड़ना चाहता है स्वाध्याय? कि होना है तब होगा समय दर्शन, तो क्यों यहाँ बैठे? तो ये अकेले स्वाध्याय में और समय दर्शन में ही लगाता है, खाने पीने समय या कोई पैसे की भी प्राप्ति होने वाली है, कोई आज लाख रुपए देने वाला है वो बहुत दिल जबान का पक्का देगा ही देगा, कैसा नहीं करता, अगर देने वाला है तो देगा, घर में आके देगा, वो मैं घर में बैठी हूँ, तब तो वो सारा प्रयत्न करके जाएगा, सब करेगा, जिताएगा, तो उसमें ऐसा वो नहीं चलता। वो सारा वो कहाँ लगाना चाहते, धर्म की बात, सारी कटौती, सारे ये धर्म के जो सिद्धांत है वो उसी के ऊपर लगा के स्वयं स्वच्छंदी होना चाहता है। तो ये स्वच्छंदता का पोषण करने के लिए शास्त्र नहीं होते, ये तो अपने स्वरूप जानकर निराकुल होने के लिए। अभी इतना भी जानते हैं कि हमारी पर्याय होने वाली है, जब होगी तो आकुलता अभी हमारी थोड़ी कम हो गई कि नहीं होगी, कि मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरी अनादि अनंत पर्याय सारी खचित है, जिनेन्द्र भगवान अनंत केवल ही भगवानों ने जाने, तो मुझे कहाँ देखना रहा? तो पर्याय की तरफ की नजर हटाकर पूरा जो मैं अनादि अनंत है उसी को देखेंगे हम, कि जैसा मैं स्वरूप अनादि काल से अनंत काल तक ज्ञायक भाव रूप है, ज्ञायक ही मेरा रूप है, जानन स्वभाव वाला ही मैं द्रव्य हूँ, उसकी तरफ देखेंगे तो पर्याय में और निराकुलता और आनंद बढ़ता जाएगा। ये तो बाह्य निर्णय में भी इतनी निराकुलता होती है, तो स्वयं अपने द्रव्य का लक्ष्य करने से कितनी निराकुलता और आनंद होगा? तो आखिर वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति क्यों नहीं, बलात् परिवर्तन का हट क्यों? धर्म तो वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति का नाम है, उसी को धर्म कहते हैं। हमने इतने उपवास किए, इतनी यात्राएं की, ऐसी पूजाएं की, सुबह से लेकर दोपहर को बिना कुछ खाए पिए हमने व्रत ये उपवास ये क्या पूजाएं की, इतना मंजिल करके हमें यात्रा की, तो उसको धर्म सब मानते हैं। तो मेरा भांजा है, उसने पूरी शिखर जी की प्रदक्षिणा कर दी। प्रदक्षिणा किसे कहते मालूम है? परिक्रमा कहते उसको, अराउंड पूरा पर्वत किया, तो वो कुछ 12 घंटे में जाके आए। तो फिर आके पूछता है इसमें क्या मिला मुझे, कुछ नहीं, इसमें कहाँ धर्म है। यानी वो बच्चा भी जानता है कि इसमें मैंने किया तो सही, तो उसने क्या कि जैसे वो ओलंपिक में एक एक रिकॉर्ड बनाते हैं वैसा ही मेरा क्या हुआ। उसने शब्द हाँ ये एक वेंचर हुआ, एडवेंचर हुआ, इसमें धर्म क्या है। यानी वो जिसने जो करने वाला है ना उसमें भी उसको प्रतीत हो गया ये तो एडवेंचर हुआ, वेंचर हुआ, यानी कुछ हमने कर दिखाया, उसमें क्या है धर्म की बात यहाँ कैसे आ गई। तो ऐसे प्रश्न भी उठते हैं ना बच्चों को, तो ख्याल आता है कि नहीं नहीं ये सब सोच रहे इसके ऊपर। तो धर्म किसको कहते हैं कि वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति, अपने अंतरंग से उसमें हाँ अपन आते रहे ये तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है, मैं अभी तक नहीं जानता था और हाँ ऐसा ही होना चाहिए। जिनेन्द्र भगवंता ने ऐसा कहा है, आचार्य ने ऐसे कहा है, ये युक्ति आगम में ऐसी बातें है और युक्ति से ये बराबर साबित भी होती है, प्रूव भी कर सकते हैं हम, लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं इसको। तो ये बातें ऐसी ही है, ऐसा जब सहज निर्णय हो जाता है उसकी स्वीकृति होती है उसी का नाम धर्म है। यानी धर्म करना है ना यात्रा करना, दान देना, उपवास करना, पूजा करना, इतना धर्म नहीं है। और उसी को हमने धर्म मान लिया है और हम धर्म कर रहे हैं भोले ऐसी ये हो गई ना उनकी मान्यता हो गई और उस मान्यता में वो अपने को धर्मी मान लिया। उसमें पैसा भी बर्बाद हो रहा है और इतना मनुष्य बहुत कीमती वो भी चला गया आज तक, धर्म तो हाथ में आया नहीं है। और मान्यता में क्या कि हम धर्म करें, यानी धर्म के नाम पर इतने दिन भर में इतने 2 घंटे 4 घंटे या जब कभी निकालना है उतना निकालते भी है परंतु हाथ में कोई आता ही नहीं है। वस्तु स्वरूप की सहज परिणति की स्वीकृति ही धर्म का आरंभ है। वो तो स्वीकृति करने में तो आरंभ हुआ धर्म का, ऐसी स्वीकृति करके जब अपने द्रव्य यानी एकांत स्वभाव में स्थिर होगा, जो एकाग्र होगा, एकाग्रता होगी, अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करते करते वहीं पर स्थिर हो जाएगा, तब वो उसका धर्म में वो उसकी वृद्धि होगी, जिसको शुद्धि की वृद्धि कहते हैं, जिसको चारित्र कहते हैं। और ऐसी वृद्धि होते होते एक दिन वो पूर्णता को प्राप्त करेगा। तो क्या कहते हैं यहाँ की, देखो वस्तु स्वरूप की सहज परिणति की स्वीकृति, जो वस्तु का सहज परिणमन स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार वो स्वयं अपनी योग्य 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 पर्याय रूप से परिणमन कर रहा है, परिणमन कर रहा है, उसका स्वीकार होना, उसको अपने दिल से अपने युक्ति से उसको उसमें सही रूप से प्रतिभाषित होना अपने को, उसी का नाम धर्म है। वो तो धर्म का आरंभ है, शुरुआत है वहां। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि सहज अंतरोन्मुखी होती है, यहाँ भी सहज लगाए क्यों भाई जयेंद्र भाई, क्या प्रश्न है, प्रैक्टिकल क्या करना है, तो कैसी जाएगी अंतरोन्मुखी, सहज। जब वस्तु स्वरूप सहज है ऐसा जब स्वीकार होगा, वस्तु का परिणमन स्वभाव भी सहज है, होने योग्य पर्याय अपने सकाल में बराबर निश्चित वही होगी, तो ऐसी जब सहज परिणति की स्वीकृति होती है तो व्यक्ति की दृष्टि भी सहज अंतरोन्मुखी होती है, वो उसका अपनापन अपने द्रव्य में आ जाता है और उसकी अपने पर्याय की भी चिंता छूट जाती है और उसका स्वभाव का आरंभन ज्ञान कर लेता है। वो कैसे करेगा, क्या कोई प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं, आकुलता की जरूरत ही नहीं, ये सारा ही काम सहज में है। कहते ना ज्ञानी कहे सहज का धंधा, ये सारा सहज सहज में होता है और सहज आत्मिक आनंद की उपलब्धि भी होता है। क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि सहज अंतरोन्मुखी होती है। हम कहते हैं कि अभी हम इतना तो पढ़े, अभी हमारी अंतरोन्मुखी दृष्टि क्यों नहीं होती है, प्रश्न क्या प्रैक्टिकल कैसा करें, तो इसका पूरे सही निर्णय करके स्वीकार करो तो सहज उसकी दृष्टि अंतरंग में चली जाए। क्रमबद्ध परिणमन की सहज स्वीकृति वाले जीव की क्रमबद्ध में भी सहज स्वभाव सम्मुख परिणमन होता है। तो अभी मेरा स्वभाव सम्मुख परिणमन क्यों नहीं होता, तो क्या है कि क्रमबद्ध परिणमन की सहज स्वीकृति अभी अंदर से नहीं आई है, अभी भी अभिप्राय में कहीं कुछ खोट पड़ी हुई है। हाँ, करने धरने का विकल्प की बात नहीं है, अगर करने धरने का यानी उन्हें कर सकता हूँ ऐसा कहीं ना कहीं अभिप्राय है, या तो निश्चय उपादान में हो या क्रमबद्ध पर्याय के निश्चय में या अन्य भी जो ये 7 तत्वों का है, ये उपाधेय रूप जो सहज जैसा स्वभाव है वैसा अभी कहीं ना कहीं मान्यता में खोट पड़ी है। देवशास्त्र गुरु के निर्णय के बारे में कि देव का स्वरूप ऐसा ही है, गुरु का स्वरूप ऐसा ही है, ये पूरा मोक्ष मार्ग का जहाँ गमन करना है, हमें हमारे कदम रखना है मोक्ष मार्ग में, पूरा मोक्ष मार्ग का सही निर्णय होगा, उसके बिना उससे शुरुआत ही नहीं होगी। ऐसे नहीं अभी तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे बाद में मुनि का निर्णय करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारा निर्णय पहले होना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकट होना। ये तो सर अनंत भव में जो नहीं बात हुई, वो जो पूरा कार्य ऐसा पवित्र होगा तो उसकी तैयारी भी वैसे होगी ना। आज तक इस भव्य पंचम काल में यहाँ जन्म लिया है, वो सारे जीव मिथ्या कृष्टि के साथ पैदा हुए, अब यहाँ तो समय को पैदा कर सकते हैं, तो मिथ्या भी पैदा हुए ने अनादि काल से मिथ्या थे, या पहले कभी समय दर्शन प्राप्त भी किया होगा तो फिर दोबारा शादी मिथ्या दृष्टि होकर यहाँ जन्मे, इतना तो निश्चित है। तभी उसके लिए कुछ विशेष कार्य करेंगे ना, तो विशेष कार्य में कुछ हमें तो लगता है कि बाह्य में कुछ करना वही विशेष है, पैसा कमाना है, उसके लिए तो हम हमारी जिंदगी का भी हिसाब करने का टाइम है। तो 50 साल में हमने क्या क्या किया, पढ़ाई के लिए कितना समय, 25-30 साल तो पढ़ाई में बर्बाद, उसके बाद पैसे कमाने के लिए, बाल बच्चों के लिए, लेडीज होगी तो घर के लिए कितना आयु उसमें हमने डाल, तो ये सहज निर्णय करना था उसमें, उसके लिए कुछ अलग टाइम तो देने की जरूरत नहीं है। चलते हुए कार्यों में तो निर्णय तो हो सकता था, उसके लिए हमने अभी कुछ निर्णय किया ही नहीं, उसके लिए कुछ समय भी नहीं दिया, यानी उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। उसका निर्णय करने के लिए सभी कार्य छोड़ने पड़ते हैं, ऐसी कोई मान्यता उसमें रखने की जरूरत नहीं। ये सारे होते हुए कार्य अपने आप चलते रहेंगे और हमारी मान्यता भी अपने आप चलती रहेगी। देखो सहज स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है। देखो मुनियों का तो कितना स्वभाव सन्मुख परिणमन है, और उनकी बाह्य क्रिया भी सहज चल रही हो उसके साथ साथ, तो उनका तो अंतर छठे के सातवें गुणस्थान का काल इतना अल्प है कि हम बाह्य में देखते तो मुनि आहार ले रहे, मुनि क्या करे विहार करे, मुनि क्या करे ऐसा करे, मुनि क्या करे शासन लिख रहे, और उतने लिखने लिखने में उनके उपयोग कितने बार असंख्यात बार अंदर बाहर चल जाए, तो बाहर से देखने वाले को उनके कार्य हो रहे होते हुए दिख रहे, और उनकी तो दृष्टि स्वभाव को उन्होंने कभी दृष्टि से ओझल किया ही नहीं है। तो ये सारा चलता रहता है अपने आप। देखो सहज सारा स्वभाव, ये सारा प्रोसेस ही सहज है। तो क्रमबद्ध परिणमन की सहज स्थिति वाले जीव की क्रमबद्ध में, यानी जब जो जीव सहज क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार करता है तो उसका निश्चित होने वाली पर्याय कौन सी होगी, ये समय दर्शन की होगी। हाँ स्वभाव सन्मुख, तो उसके क्रमबद्ध में भी सहज स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है। स्वभाव सन्मुख परिणमन होते ही उसका सहज समय दर्शन की प्राप्ति होती है, सहज आत्मिक आनंद आता है, सहज वो आत्मानुभूति होती है। सारा उसका डिस्क्राइब अलग अलग शब्दों में करें, वस्तु स्वरूप में ही ऐसा सुव्यवस्थित सुमेल है। वस्तु व्यवस्था में तो कोई खोट है ही नहीं, हमने अपने मान्यता से अपने अज्ञान के कारण स्वयं अज्ञानी हो रहे। ज्ञानी भी होंगे तो हम स्वयं अपने ज्ञान भाव का कर्ता होकर ज्ञान करेंगे और ज्ञानी हो जाएंगे। अभी इससे आगे भी अधिक चेता होंगे तो स्वयं अपने में स्थिर होकर ही हम अधिक चारित्रवान हो जाए, अपने में ही स्थिर होकर अपने स्वभाव में से केवल ज्ञान प्रकट करें। तो ये सारा सहज सुव्यवस्थित है। द्रव्य और गुण के समान पर्याय भी सब है ना, एग्जिस्टिंग है ना, पर्याय अपने अपने स्थान पर निश्चित है और वो एक एक समय वाली सब है, अभाव रूप नहीं है वो। तो द्रव्य और जैसे गुण, जैसे द्रव्य है गुण भी है। अभी द्रव्य है, अभी एक द्रव्य की बात करते, ये द्रव्य है उसके सारे गुण इसमें है। अभी हमने देखा था ना पर्याय, उनकी ऐसे पर्याय बताए और उसकी सारी पर्याय भी है। तो प्रत्येक पर्याय अपने अपने स्थान पर है, तो वो सब एक ही वर्तमान पर्याय की बात करते हैं, तो वर्तमान की एक पर्याय अभी वर्तमान में सब है, यानी प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय पर विद्यमान है, सब है। प्रवचन सार गाथा 107 में इसका स्पष्ट उल्लेख है, द्रव्य और गुण यदि त्रिकाली सत्य है तो पर्याय स्वसमय अर्थात एक समय की सत्य है, यानी प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय पर सत 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 रूप से विद्यमान है। हमने कहा थी ना सारी पर्याय जैसे रत्नों की भांति खचित है, तीनों काल की, तीन काल में जितने समय है उतनी पर्याय एक एक द्रव्य की निश्चित है। तो वो अपने अपने समय पर स्व समय पर वो सत है। जिस प्रकार द्रव्य और गुण की त्रिकाल सत्ता को चुनौती यानी चैलेंज नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार पर्याय की भी स्व समय सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी उसका जो अपने अपने एक समय मात्र टिकना यह जो है पर्याय, वो भी उस समय से उसको आगे पीछे इधर उधर या जैसा है वैसा नहीं कि अन्यथा पलट नहीं सकते, उसको कहते चुनौती चैलेंज नहीं दे सकते, यानी वो पर्याय को कोई पलटा नहीं सकता। किंतु द्रव्य और गुणों से देख पर अज्ञानी की दृष्टि पर्याय पर रहती है, पर्याय के फेरफार करने के विकल्प में ही उलझी रहती है। किसकी? जिसको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पता नहीं है, ऐसा जो अज्ञानी है वो हमेशा पर्याय पर ही उसकी दृष्टि है। मैं मनुष्य हूँ इतना ही मानता है वो, तो उसको ज्ञान की पर्याय श्रद्धा की पर्याय इसका भी वो कभी विचार नहीं करता, तो पर्याय पर दृष्टि रहती है और पर्याय के फेरफार करने के विकल्प में ही वो हमेशा उलझा रहता है। इसी उलझाव के कारण उसकी दृष्टि स्व द्रव्य पर नहीं जा पाती। वो अपने को मनुष्य मान लिया है, अपने को गरीब मान लिया है, तो श्रीमंत होने का चक्कर है। जो जो कुछ संयोग रूप से अपने को मान लिया, तो विशिष्ट संयोग लाना चाहता है, कोई जो उसके जो फेवर में नहीं है उसको सुहाते नहीं, वो संयोग दूर करना चाहता है, और इसी चक्कर में उलझा रहने के कारण अपने स्व द्रव्य पर उसकी दृष्टि नहीं जाती, वह द्रव्य दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता। आगम में पर्याय मूढ़ा ही पर समय, पर्याय ने पर्याय, पर्याय मूढ़ यानी पर्याय में ही जो पर्याय रूपी अपने को मान रहा है वो पर समय है, यानी वो मिथ्या दृष्टि है, पर समय रथ कहा उसको। तथा जो पर्याय सुने रदा जीवा पर समय गति निदिष्ठा, यानी जो पर्याय में ही निरत है लीन है, वे जीव पर समय गति निदिष्ठा, वो जीव पर समय है ऐसे निर्दिष्ट है, ऐसा बताया है जिनेन्द्र भगवान ने, ऐसा बताया कहकर पर्याय दृष्टिवंत को मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टिवंत को सम्यक दृष्टि कहा गया है। यानी पर्याय मात्र पर्याय को सम्यक दृष्टि भी पर्याय का ज्ञान करेगा, परंतु वो पर्याय दृष्टि नहीं है, वो अपने को पर्याय रूप से नहीं अनुभव रहा, वो तो अपने को तो पूरा द्रव्य रूप पूरा त्रिकाल रूप अनुभव करता है, और अपने को अकेले पर्याय मात्र में है। पर्याय मेरा है ना, मैं क्रोधी हूँ बस इतना ही मेरा स्वरूप है, ऐसा उस जीव ने जान लिया, उसको कहते हैं पर समय, उसको मिथ्या दृष्टि बना। द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति आवश्यक है। द्रव्य दृष्टि कब प्राप्त होगी? जब द्रव्य की दृष्टि करेगा। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में निबद्ध एक वस्तु है, तो द्रव्य की दृष्टि करने से वो तीनों काल के पर्यायों का क्रम आया ना, उसमें पूरा प्रवाह है। अकेली पर्यायों की भाषा में बात करनी है तो अनादि अनंत पर्यायों में प्रवर्तित ऐसा जो है वही तो द्रव्य है। अपने अनादि अनंत काल में किसी न किसी पर्याय रूप से वो विद्यमान रहेगा, तो ये पूरा प्रवाह है वही तो द्रव्य है। द्रव्य इनसे भिन्न कोई चीज ही नहीं है। तो क्या कहते हैं इसमें यहाँ कि द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति आवश्यक है। जब हम अभेद रूप से द्रव्य का अनुभव करेंगे तो उनके लिए वो सामान्य है, वो अभेद है, वो नित्य है। नित्य में तो पूरा ही पर्यायों का अनादि अनंत पूरा प्रवाह ले लिया नित्य कहते ही, यानी नित्य में अकेला पर्याय विरहित द्रव्य ऐसा नहीं लेना, नित्य में ये सारा अनादि अनंत पर्यायों सहित वाला पूरा नित्य में लेना पूरा प्रवाह। अब जब प्रवाह लिया तो क्या पूछे कि इसमें पर्याय को शामिल करना कि नहीं करना, तो पर्याय की एक एक पर्याय की अलग बात कहाँ रही, वो प्रश्न आता है ना द्रव्य दृष्टि में पर्याय को शामिल करना कि नहीं करना। तो द्रव्य की दृष्टि की तो पूरा अनादि अनंत द्रव्य हमने ख्याल में लिया, यानी पूरा पर्यायों का पूरा क्रम। एक पर्याय की बात करेंगे यानी हमने इस क्रम को तोड़ लिया, एक विशिष्ट पर्याय पर हम दृष्टि ले जाएंगे तो हमने पूरा प्रवाह का क्रम नहीं लिया, एक पर्याय की दृष्टि। तब जब हमने पर्याय को दृष्टि में से ओझल किया, वो सारे इस प्रवाह में इंक्लूडेड है, सारी ही पर्याय ये पूरे प्रवाह में है। जब पर्याय कहते हैं वो भेद का नाम ही पर्याय होता है। भेद किए बिना पूरा द्रव्य हमने ख्याल में लिया तो फिर पर्याय है कि नहीं पूछने की क्या जरूरत है? पर्याय है कि नहीं, इसका अर्थ लक्ष्य किसका रहा? पर्याय। तो सारे ही पर्याय है, बस अभी पर्याय की बात नहीं करना। पर्याय शब्द निकलते ही वो पर्याय की तरफ लक्ष्य जा रहे हैं। ख्याल आता है किसने कहना चाहती हूँ? आपका अभ्यास कितने मुझे पता नहीं है, परंतु ये सारा इन्हें यानी एक पर्याय की हम चर्चा नहीं करें। अनादि अनंत पूरा पर्याय प्रवाह क्रम हमने लिया, वो द्रव्य का स्वकाल में ले लिया, वो उसकी पूरे नित्यता में शामिल कर दिया। जो होंगे सामान्य अभेद नित्य और एक, एक में भी ये ज्ञान गुण है के दर्शन गुण है के चार गुण पूरा एक ले लिया। तो जब ऐसे पूरा ऐसा द्रव्य ख्याल में लेते उसको कहते द्रव्य दृष्टि। ये अपनी बात चले अपने द्रव्य पर घटाना चाहिए। द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति आवश्यक है। तो हमने सच्चे दिल से स्वीकार किया, हाँ मैं ऐसा हूँ और मेरे अनादि अनंत पर्याय क्रम मेरे में विद्यमान है, मेरे में इसी शक्ति अंदर स्वभाव में ही पड़ी है कि वो पूरा एक एक समय पर वही पर्याय उसी समय वैसे ही होने वाली वही होगी। पर्याय भी स्वकाल की सत है, उसमें भी किसी प्रकार का फेरफार संभव नहीं। अभी हम जीव द्रव्य है तो बदल कर उद्गल द्रव्य हो जाएंगे कुछ काल के बाद? वैसे क्यों, हम सत है, हम तो जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य ही अनादि अनंत रहेगा। वैसे पर्याय भी सत है, वो भी वही पर्याय रहेगी जो अपने काल में वो है, उसमें किसी प्रकार का फेरफार संभव नहीं है। इसी प्रतीति होते ही पर्याय की ओर से निश्चिंत द्रव्य निश्चिंत दृष्टि स्वभाव की ओर बढ़ जाती है। यानी स्वभाव की दृष्टि कब होगी? तो पर्याय की हम चिंता में डूबे जा रहे हैं। जब तक पर्याय की अभी सारे हमारे पर्याय हमारे में विद्यमान है और होने वाली जो होने योग्य वही होगी ऐसा जब हमने निश्चित कर लिया तो पर्याय की चिंता छूट गई। कब इसका समय दर्शन होगा, कैसे होगा, कौन सा निमित्त होगा, हमको ज्ञानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे बाबा सामने ज्ञानी आया तो भी उसको पहचानने की भी ताकत नहीं है तो क्या करे। तो इन सारे उलझनों की ओर से निश्चिंत होकर कहाँ देखना रहा? अपने द्रव्य की ओर। तो ये निश्चिंत होकर ही दृष्टि स्वभाव को पकड़ती है। जब तक कहीं ना कहीं पर्याय उनको फेरने की या लाने की चिंता रहेगी तब तक वो स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। कितना भी वो यही प्रैक्टिकल है, कैसा बैठना कैसा सोचना, ये कैसा सोचना है जिसका जो जैसा अभ्यास है उस रूप से सोचते वो अपना स्वभाव की ओर प्राप्त करेगा। दूसरे की सोच सोच कर हम कैसे सोचेंगे? लोग पूछे ना आप कैसा चिंतन करते हो, हम कैसा करें? हम अपनी पद्धति से करते हैं, हम अपना करो। जिसका जो निर्णय जहाँ जो धारणा में लिया है ज्ञान उसको कैसा निश्चित करना और अपने वो कार्यकारी कैसा होना, ऐसा नहीं कि एक वाक्य बोले तो इसको उस विशिष्ट बात पर चिंतन करने से होगा, दूसरे को भगवान के दर्शन करने से उसके आत्मनोन्मुख परिणाम हुए। अरे भगवान आप तो सर्वज्ञ, आपने सभी जीवों की सभी द्रव्यों के पर्याय जान ली, वो तो निश्चित है, आपने तो जानी है और प्रत्यक्ष आप सामने है, तो उसको उनका लक्ष्य छूटकर अपना तो अपने को पकड़ेगा। सम्यक दर्शन में तो ऐसी बातें आती है ना, किसको कैसे हुआ, तो नारकी में क्या है तो वेदना, वेदना की तरफ से लक्ष्य हट कर वो अपना सिद्धात्मा का स्वरूप ख्याल में ले लेता है, वहाँ भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। तो हमारी दृष्टि हमेशा वो निमित्तों पर पड़ी, निमित्तों पर पड़ी है, अभी वो निमित्तोपादान का सही निर्णय नहीं हुआ, अभी वस्तु स्वभाव की क्रमबद्धता का भी निर्णय नहीं है। ये क्रमबद्ध के निर्णय में निमित्त का भी निर्णय आ जाता है, उपादान का भी सारा निश्चित पांचों ही समवायों का होगा। तो तब तो सहज ही दृष्टि स्वभाव पर जाएगी। क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति बिना, जिसको क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति नहीं है यानी उसके बिना दृष्टि का स्वभाव सम्मुख होना संभव नहीं है, तब तक दृष्टि अपनी स्वभाव की ओर नहीं जाएगी। वो कहीं ना कहीं पर में ही या तो अपनी पर्यायों की तरफ या पर की पर्यायों की तरफ या निमित्त लाने की चिंता में ही हो रहेगा, क्योंकि पर्यायों में अपनी इच्छानुकाल से इच्छानुकूल फेरफार करने का भार उस पर बना रहता है। यानी इच्छा यह है चारित्र गुण का विभाव, चारित्र गुण का विभाव करके वो ज्ञान की और श्रद्धा की सम्यक परिणाम की लगाना चाहते हैं। क्या विभाव परिणमन से सम्यक परिणमन करना चाहते हैं, होगा ना। पुरुषार्थ का है मुझे इच्छा हुई और हम वो इच्छा का है विभाव परिणाम, विभाव परिणाम करके हम स्वभाव परिणाम लाना चाहते हैं। यदि वह मान्यता क्या है कि मैं इच्छा करूं तो ऐसा हो सकता है, तो उसने अपनी इच्छा अनुसार या अपने इच्छा के अनुकूल पर्यायों में फेरफार करने का भार, यानी उसकी चिंता, उसका अभिमान या उसके बोझा लिए बैठता है। फेरफार करने के भार से बोझिल दृष्टि में, यानी उस भार के नीचे दबी हुई दृष्टि में यह सामर्थ्य नहीं कि वह स्वभाव की ओर देख सके। ऐसी दृष्टि तो स्वभाव की तरफ जाती ही नहीं। दृष्टि के संपूर्णतः निर्भर हुए बिना, निश्चिंत हुए बिना, जब तक चिंता आएगी पर्यायों की तब तक वो दृष्टि अपने को नहीं पकड़ेगी। अंतर प्रवेश संभव नहीं। अंतर प्रवेश यानी शुद्धात्मा को स्वयं रूप से जो जानना है, उसमें अनुभव करना है, तो वो होगा नहीं। वो अंतर बाहर ऐसा कुछ नहीं, आत्मा अंदर बैठा है, अंदर जाना है, बाहर आना है, वो तो भाषा में आएगा। ऐसे अंतर उन्मुख परिणाम, स्वभाव उन्मुख परिणाम, तो हम तो ये सारा ऐसा मानते कि मैं ये कुछ चीज हूँ, इतना ये मनुष्य हूँ और मेरे अंदर कुछ आत्मा बैठा है और मुझे उसे देखना है। यानी हम अपनापन मानते हैं शरीर में और हमारे अंदर वाला आत्मा देखना चाहते हैं। क्यों ऐसे हो रहा है ना, शुरू में होगा ऐसा, उलझने बहुत होगी, अरे मैं मनुष्य हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो उलझने होने दो, कोई चिंता नहीं है, उसकी भी चिंता छोड़ दो कि मेरी उलझन कैसी चलेगी, चल जाएगी। जब सही निर्णय हम करते जाएंगे तो ये भी सारी उलझने मिट जाएंगे। कहा भी है, जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। मझधार यानी बीच धारा, जैसे पार करनी है बड़ी नदी तो माथे पे बहुत बड़ा भार लेकर वो नदी पार नहीं कर सकते, तो वो तो माथे के भार से जो दबे गए वो तो बीच मझधार में ही डूब गए। और हम कैसे, हम तो पार उतरते कैसे, झोंक भार को भार में, यानी हमने अपने भार को वहीं फेंक दिया, भार में फेंक दिया। शिखर जी भी चढ़ते ना तो पहले तो ऐसे लगता है ऊपर जाएंगे क्या होंगे, बहुत ठंडी होगी, प्यास लगी तो क्या होगा, और कुछ खाना पीना उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, और कुछ साथ में ले जाएं, तो सारा बोझा टॉर्च भी चाहिए। जितना हम चढ़ने लगते हैं तो इतने ऐसा भार होता है, तो एक एक कदम ऐसे एक 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 प्रकार का, कोई डोली वाला साथ में होगा, कोई बैठा होगा अपना पहचान वाला, तो एक एक चीजें उसके पास लेते जाइए। और हम निर्भर होते हैं तो स्वेटर वेटर भी उतार कर जा और फिर निर्भर होकर निश्चिंत कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है यहाँ, तो पर पर्यायों का या अपने ही पर्यायों का करने धरने का जो चिंता रूप, जो भ्रम रूप भार है, अभी ना इसको पर को हटाना है ना कुछ जुटाना है, ये जो भ्रम रूप भार था उससे वो आकुलित हो रहा था, वो चिंता उसको छोड़नी है। सही स्वरूप का निर्णय होते ही चिंता छूट जाती है, यानी चिंता छोड़ने की भी चिंता मत करना। नहीं बहुत टेंशन है, काहे का, अरे अभी कुछ चिंता टेंशन नहीं ना, इसलिए मुझे टेंशन आ रहा है, ये हमारे टेंशन कब दूर हो गई, इसका टेंशन आ रहा है। ऐसा ही है, ये तो सारी चिंताएं छोड़ देने की बात है। अब तो दस बज गए, यहाँ से शुरू कर शुरू करेंगे 50 पेज से। जावानी के ज्ञान कहे सूझे